ॐ नमः सिद्धिभ्यः नमो वरहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयिर्याणम् नमो उवज्झायाणम् नमो लोय सौफसाहूणम् ईसो पञ्चणमो यारो सौवपावपणासनो मङ्गलाणं च सौवेसि पठमं वै मङ्गलम् चत्तारि मङ्गलम् अरहन्तु मङ्गलम् सिद्धमङ्गलम् साहु मङ्गलम् केवलिपण्णत्तो धम्मो मङ्गलम् चत्तारि लोगुत्तमा अरहन्तु लोगुत्तमा सिद्धलोगुत्तमा साहुलोगुत्तमा केवलिपण्णत्तो धम्मो लोगुत्तमा चत्तारि शरणं पव्वज्जामि अरहन्त शरणं पव्वज्जामि सिद्ध शरणं पव्वज्जामि साहु शरणं पव्वज्जामि केवलिपण्णत्तो धम्मो शरणं पव्वज्जामि क्षण भंगुर जीवन की कलिका कल प्रातः काल खिली न खिली मलयाचल की शुचि शीतल वायु सुगंध समेत मिली न मिली कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र है चोट झिली न झिली भजले अरिहंत अरी रसना फिर अंत समय में हिली न हिली नमो अरहंताणम। इस पद के अंतर्गत आदिश्वर प्रभु भी आते हैं और आज आप भक्तांबर पर बड़ा काम करने जा रहे हैं। हमारे अंदर 26वें काव्य का ही भाव जागृत हुआ था। तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिनभवो दधिशोषणाय। माता सरस्वती की कृपा से और गुरु के आशीर्वाद से जो कुछ हमें प्राप्त था उसका आलंबन लेकर नमो और हंताड़म केवल एक पद पर अपने लगभग 40-45 दिन हो चुके हैं। दो में जब हम नेमावर में अपने गुरुवर आचार्य दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज से मिले थे, तब हमने उनको भक्तामर के बारे में एक प्रश्न पूछा था। हमने पहले भी ये बात कभी बताई है। वो प्रश्न ये था कि भक्तावर के 34वें काव्य में चौथी पंक्ति में दो बार अपि शब्द क्यों है। दीप्त्या जयत्यपि निशाम अपि सोम सौम्या, अपि दो बार क्यों है। एक ही वाक्य में दो बार भी कैसे हो सकता है। तब आचार्य ने कहा कि अपि शब्द का अर्थ कभी कभी भी होता है और कभी कभी ही भी होता है। तो बात तो हमारे लिए थोड़ी नवीन थी, क्योंकि अपि शब्द का तो हमेशा हम लोग अर्थ समझते आए हैं भी, तथापि, फिर भी, कथम अपि, किसी भी प्रकार, हर जगह भी सुनने में आया था। पर वहां पर फिर हमने खोज प्रारंभ की कि शास्त्रों में जहां जहां अपि शब्द आता है वहां वहां भी अर्थ निकलता है, या आचार्य महाराज जो कह रहे हैं ही, वो भी निकलता है। तो सबसे पहला उदाहरण हमें मिला ही वाला, जो सामायिक पाठ प्रतिदिन पढ़ते हैं सभी साधु लोग, उसके पहले काव्य में। क्या था पहला काव्य? सत्वेषु मैत्रीं गुणिषु प्रमोदम्, क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वम्, माध्यस्थ्य भावं विपरीत वृत्तौ, सदा ममात्मा विदधातु देव। यहां पर अपि शब्द नहीं था। पहले काव्य, दूसरे काव्य और तीसरे काव्य, इसमें भी सदा शब्द था, लेकिन सदा के साथ हमेशा सदैव शब्द लगता है। आपको पता होगा जब भी बोलते हैं अपन मैंने सदैव प्रभु की भक्ति की है, मैंने सदैव अभिषेक किया है, वो सदा के साथ एव शब्द लगता है। लेकिन आचार्य श्री ने जो बात कही थी वो हमें पहले काव्य में सदा शब्द मिला, दूसरे काव्य में फिर देखा, दूसरे काव्य में क्या था? शरीरतः कर्तुम अनंत शक्तिम विभिन्न मात्मा नमपास्त दोषम। जिनेन्द्र कोशादिव खड्ग यष्टिम तब प्रसादेन ममास्तु शक्ति। मां भगवान से शक्ति की प्रार्थना की जो अपन ने कल की थी। फिर तीसरे काव्य में गए तो वहां पर समता की प्रार्थना की भगवान से कि हे भगवान मेरे मन में समता बनी रहे। अब कैसे प्रार्थना है वो तो आचार्य अमित गति लिख रहे हैं। दुखे सुखे वैरिणि बंधु वर्गे योगे वियोगे भवने वने वा, निराकृताशेष ममत्व बुद्धे समम मनो मेस्तु सदापि नाथ। दुख में सुख में, वैरी के प्रति, संबंधी के प्रति, बंधुजनों के प्रति, संयोग में, वियोग में, भवन में, अथवा वन में। निराकृता शेष ममत्व बुद्धि ही, मैंने बुद्धेः षष्ठी का एक वचन है, मैंने जब दीक्षा ली, मैंने जब सब त्याग किया, तो मैंने अपनत्व भाव को छोड़ा, अपना कोई नहीं है, ये बात मैंने समझ ली। तो हे नाथ, हे प्रभु, मैं मनः, मेरा मन सदापि समम अस्तु। अब यहां पर सदापि समम अस्तु, इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा, ये एक प्रश्न खड़ा होता है। मेरा मन हर विषमता में समम अस्तु, सम रहे। सदापि समम अस्तु, तो वहां पता चला कि अपि शब्द का अर्थ ही होता है। वहां पर यह अर्थ नहीं था कि मेरा मन सदा भी समान रहे, मेरा मन सदा ही समान रहे, ये अर्थ था। तो एक एक अक्षर में चमत्कार है। जब शुक्ल ध्यान का वर्णन पढ़ते हैं तब पता चलता है कि वो मुनिराज पृथक वितर्क विचार में एक अक्षर से दूसरे अक्षर पर उनका ध्यान जाता है, जैसे अरहम का ध्यान कर रहे हैं और धर्म ध्यान से ऊपर की श्रेणी में चले गए हैं। अरहम, अर, अ के बाद र आया, फिर हम, ह आया, फिर म, अनुस्वार आया। ध्यान भले ही अरहम पर है, लेकिन अरहम में जो हिस्से हैं, जो विभाग हैं, उनमें स्थानांतरित हो रहा है ध्यान, इसीलिए उसका नाम पृथक तो वितर्क विचार है। और एकत्व वितर्क अविचार में क्या होता है कि ये जो स्थानांतरण है इसको अपन चंचलता नहीं कहेंगे, क्योंकि ध्यान स्थिरता का नाम है। वो ऐसे ध्यान में लीन है जो आज इस काल में कोई नहीं कर सकता, और इस काल के श्रुत केवली भद्रबाहु स्वामी भी उस ध्यान में नहीं जा सके थे। उस ध्यान में स्थित साधु अरहम अथवा ओम का ध्यान करते हैं, तो जब वो एक में स्थिर हो जाते हैं, एकत्व वितर्क अविचार ध्यान को प्राप्त हो जाते हैं, तब क्षपक श्रेणी में जाने पर उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। वो आत्मा है ही है, सभी आत्माएं हैं, वो परमात्मा हो जाते हैं। अभी अपन इस काल के जितने भी जीव हैं वो परमात्मा के मार्ग पर हैं, और उस काल के वो महा मुनि आत्मा से स्वयं परमात्मा हो जाते हैं। तो उन परमात्मा की अपन जो व्याख्या सुन रहे हैं इतने दिनों से, कई शास्त्रों से अपन ने वर्णन सुना है। एक ध्यान ग्रंथ है तत्वानुशासन, उसकी कारिका हमने आपको सुनाई थी कभी, लेकिन वहां पर एक बड़ी विशेष बात कही गई है कि यदि आप उनका ध्यान लगाते हैं परमात्मा का, देखो परमात्मा का जप करना, परमात्मा के नमस्कार पद का पाठ करना अलग बात है। जैसे नमो अरहंताणम, नमो अरहंताणम के ध्यान को लेकर के चर्चा हुई थी अपनी पहले। नाणसार ग्रंथ में पद्म सिंह मुनिराज ने लिखा है कि अपनी दो आंखें हैं, दो कान हैं, नासिका के भी दो द्वार हैं, इड़ा और पिंगला और एक मुख है, यानी अपने इस शीर्ष में ये सात स्थान है और नमो अरहंताणम में सात अक्षर है। तो कमर पीठ और गर्दन को सीधा करके अपन संतुलित बैठकर पल भर के लिए देखें कि शरीर में किस ओर खिंचाव है, दाहिनी ओर या बाईं ओर। कंधों को ढीला करके, आंखों को बिल्कुल शांत करके और विशेष रूप से जिह्वा को, जिह्वा हमेशा तनाव में रहती है, आप देखिएगा। आप जिह्वा को ढीला करने का प्रयत्न करें तो आपको पता चलेगा नागपुर के मोठे मंदिर में एक दोहा लिखा हुआ है ऊपर के खंड में, जिह्वा बड़ी उतावली बोले ताल कुताल, आप बोल भीतर रहे थप्पड़ खावे गाल। तो आप ध्यान के समय देखिए आप जीभ की क्या हालत है, आंख, जिह्वा और नाभि, इन तीनों को बिल्कुल तनाव मुक्त कर दीजिए। और अपनी दो आंखों पर एक एक अक्षर लीजिए, नमो अरहंताणम का ऋण एक आंख पर, मो दूसरी आंख पर, कल्पना से अपने ही हस्ताक्षर में लिखिए। कानों में एक में अ, दूसरे में र, री, रू, तीन में से कोई भी। एक नासिका में हन, दूसरी में ता, और मुख पर ऋणम, नमो अर हंताणम। ये ध्यान है प्रथम पद का। ग्रंथकार कहते हैं कि यदि कोई साधु इस ध्यान में स्थिर हो जाते हैं, सातों अक्षर आपको एक साथ स्पष्ट दिखेंगे, आपने अपने हस्ताक्षर से लिखे हैं। जैसे प्रिंटेड नमो अरहंताणम अपन कागज पर देखते हैं, वैसे ही अपने मुख मंडल पर अपने को ये सातों अक्षरों में नमो अरहंताणम सुस्पष्ट दृष्टिगोचर हुआ। आंखें बंद है, वहां आचार्य कहते हैं कि जो साधु इस ध्यान को प्राप्त कर लेते हैं और इसमें अचल हो जाते हैं, वो आधे क्षण में संसार का कोई भी कार्य करने में सक्षम हो जाते हैं। उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं होता। इसके लिए लेकिन समय लग सकता है, साधना करते करते संभवतः कुछ वर्ष भी लग सकते हैं, कभी कभी 25 वर्षों में उपलब्धि होती है। कोई कामना नहीं है, बस आनंद आ रहा है। प्रतिफल की इच्छा नहीं है, भक्ति और ध्यान में बस जो आनंद प्राप्त हो रहा है उसके अतिरिक्त किसी की आवश्यकता भी नहीं है। कल अपन ने भगवान से प्रार्थना की थी कि हे भगवान, सबसे पहले मुझे क्षमा प्रदान कीजिए, मुझसे बहुत गलतियां होती हैं। फिर अपन ने कहा था कि हे भगवान, मैं पवित्रता चाहता हूं और पवित्रता के मार्ग पर बढ़ने के लिए कुछ नियम यम संकल्प ग्रहण करता हूं, संकल्प निभाने की मुझे शक्ति दीजिए। फिर तीसरी प्रार्थना की थी कि मुझे पवित्रता दीजिए, मुझे शुद्धि और विशुद्धि प्रदान कीजिए। चौथी प्रार्थना की थी मुझे शांति दीजिए, और अंतिम प्रार्थना की थी कि मुझे ध्यान का आनंद दीजिए, भक्ति का आनंद दीजिए, ज्ञान का आनंद दीजिए, क्योंकि इन्हीं तीनों में आनंद है, अन्यत्र नहीं। या तो भक्ति में आनंद आता है, या ध्यान में आनंद आता है, या ज्ञान में आनंद आता है। जब अपन भगवान का परिचय प्राप्त करते हैं, जब अपने को ज्ञान होता है परमात्मा का कि परमात्मा क्या हस्ती है, कितना आनंद आता है। तृणमो अर्हंताणम, अद्भुत के अतिरिक्त कोई दूसरा शब्द नहीं है। व्याख्याएं तो अपन ने बहुत सारी सुनी, पढ़ी, समझी, और फिर इसमें एक बात और आई थी। वीरसेन आचार्य महाराज ने यह कहा था कि ये मंगल है। मंगल किसे कहते हैं? जिसको पढ़ने पर विघ्न नष्ट हो जाए उसको मंगल कहते हैं। अभिप्राय ये था कि उसको पढ़ते ही विघ्न उत्पन्न करने वाले जो अपने अंदर के पाप कर्म हैं वो गल जाते हैं। मम का अर्थ पाप होता है और गल का अर्थ होता है उनका विनाश। मंगल। इसके उपरांत एक बात और कही थी। ये तो पढ़ने की बात थी, लेकिन इसका अभिप्राय समझकर अरहंत को जानकर ध्यान करने से असाध्य कर्म नष्ट हो जाता है। असाध्य का अर्थ क्या है? जिसको सिद्धांत में निधत्त निकाचित श्रेणी का कर्म बताया गया है, जिसको बोलचाल की भाषा में पत्थर की लकीर वाले प्रारब्ध के रूप में जाना जाता है, अकाट्य कर्म जिसको कहा जाता है, वो कट जाते हैं। क्या शक्ति है ध्यान में? सब ने ध्यान किया है, बड़े बड़े महापुरुषों ने ध्यान लगाया, 2400 तीर्थंकरों ने ध्यान लगाया, भरत, बाहुबली, श्री राम, हनुमान, सब ने ध्यान लगाया। बस ध्यान आपको आगम से सीखना होगा, क्योंकि अभी जो वर्तमान में गाइडेड मेडिटेशंस चलते हैं उसमें कुछ बातें थोड़ी सी भगवत वचन, परमात्मा वचन से भिन्न भी आ जाती है। क्या है कि मनुष्य है, अब मनुष्य का मन कब क्या रच डाले कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए अगर शुद्ध आगम से अपन देखते हैं तो उसका परिणाम कुछ और निर्मल होता है। आगम में स्थान भी बताएं कहां कहां ध्यान करना है। नेत्र द्वंद्वे श्रवण युगले, नासिकाग्रे ललाटे, ऐसा पूरा एक काव्य है मंदाक्रांता छंद में। उतने स्थानों पर ध्यान लगाने का आगम में निर्देश है और भक्त उस ध्यान में समर्थ हो सकता है, सब लोग नहीं हो सकते। भक्त कौन है? तो आज हम पहली बार बताते हैं आपको। एक तो हम बता चुके हैं पहले, भज धातु में क्त प्रत्यय करके व्याकरण से जो भक्त शब्द बनता है वो तो हम बता चुके हैं। उसका अर्थ होता है जो भक्त यानी टूटा हुआ है। कहां से टूटा हुआ है? अकड़ से टूटा हुआ है। जिसकी अकड़ टूट चुकी है उसका नाम भक्त है। जब तक अकड़ नहीं जाती तब तक आत्मा पकड़ में नहीं आती। तो भक्त का अर्थ टूटा हुआ। अनंतानुबंधी कषाय टूट जाए भक्त बन गए, अहंकार टूट जाए भक्त बन गए। और भक्त की परिणति के बारे में हम बता रहे हैं आपको। हम जो कह रहे हैं ना, पहली बार हम बताने जा रहे हैं, जो आराध्य के आदेश को, निर्देश को, उपदेश को और संदेश को अपने हृदय में और जीवन में स्थान देता है उसका नाम है भक्त। तो भक्ति के साथ यदि नमोकार का ध्यान किया जाए और इतना जो अपने को ज्ञान प्राप्त हुआ आगम से, इतने दिनों तक अपन ने लगभग 1.5 महीने हो गए, जो अटेंडेंस के दिन है उसकी बात, क्योंकि अष्टमी चतुर्दशी का तो अवकाश रहता था। यहां का नियम है अष्टमी चतुर्दशी को पहाड़ पर जाते हैं सब, तो अष्टमी चतुर्दशी को अपना उपदेश नहीं होता था। और आप लोग भी, कई लोग छुट्टी मारते होंगे, ऐसा नहीं, अपने को जब अवकाश मिले तो फिर अपन और भी आराधना कर सकते हैं। ये सुनने वाले जो वचन है ये तो थ्योरी की क्लासेस थी, और जिस दिन अवकाश का दिन हो उस दिन प्रैक्टिकल कर लिया। और अब नमो अरंताणम बोलने में कितना अंतर पड़ गया, जो अपन कुछ महीनों पहले बोला करते थे और अब जो बोलते हैं उसमें फर्क पड़ा कि नहीं? आकाश पाताल का अंतर आ गया। जब अपन ने जाना, अभी अपने को कुछ और भी जानकारियां आगम से प्राप्त होगी। जैसे अपन ने जो भगवान का जो शरीर होता है, अरहंत जो है वो सकल परमात्मा है। सकल का अर्थ होता है कल यानी शरीर, शरीर सहित परमात्मा है, सकल। जैसे विनय सहित को सविनय बोलते हैं, वैसे शरीर कल सहित को सकल बोलते हैं। कलेन स वर्तन्ते इति सकलः। तो सकल परमात्मा है, शरीर वाले परमात्मा है, और सिद्ध परमात्मा जो है वो अशरीरी है। तो अपने दो परमात्मा है, सशरीर और अशरीर, सकल और निष्कल। निष्कल को अपन शॉर्ट में निकल परमात्मा बोलते हैं। दौलत राम जी ने ऐसे सकल निकल शब्दों का प्रयोग किया है। संस्कृत भाषा में निष्कल है, कलात निष्क्रांत इति निष्कलः। तो उनके शरीर के विषय में कुछ जानकारियां और है शास्त्रों में, जो हम आपको अभी तक बता नहीं पाए, कि जो तीर्थंकर भगवान होते हैं उनके शरीर पर 1008 चिन्ह होते हैं। उन चिन्हों में 900 व्यंजन होते हैं। व्यंजन का अर्थ है तिल, फिर कुछ मस्से होते हैं, कुछ चिट्टे होते हैं, कुछ लेसन होते हैं और तिल के भी वर्ण भिन्न भिन्न होते हैं। श्वेत तिल भी होते हैं, रक्त तिल भी होते हैं और कृष्ण तिल भी होते हैं और भूरे रंग के तिल भी होते हैं, ब्राउन, विभिन्न प्रकार के तिल होते हैं। और कहते हैं कि जब संतान का जन्म होने वाला होता है तब मां की हथेलियों पर कुछ तिल प्रकट होते हैं और उसके जन्म के उपरांत वो विलीन हो जाते हैं। और माता बहनों के वाम अंग में तिलों को, मसों को, चिट्टों को, लहसनों को शुभ माना गया है। और भाई बंधुओं के दक्षिण अंग में इनको शुभ माना गया है। इनके अतिरिक्त लक्षण जो बताए हैं, लक्षण में कुछ आकृतियां होती हैं, जैसे तीर्थंकर भगवान के वक्षस्थल पर एक श्रीवत्स का चिन्ह होता है, श्रीवत्स का, जो आज अपन प्रतिमाओं में देखते हैं ऐसे एक छोटे से कमल जैसा आकार बना रहता है, वो श्रीवत्स नाम का चिन्ह है, वो एक लक्षण है। 108 लक्षण होते हैं, 108 लक्षणों में एक लक्षण श्रीवत्स। इसी तरह उनके हाथ में सूर्य, चंद्रमा, ध्वजा, कलश, सरोवर, समुद्र आदि विभिन्न प्रकार के चिन्ह होते हैं। उनके शरीर में भी अलग अलग स्थानों पर ऐसे कुछ चिन्ह बने होते हैं। तो कुल मिलाकर ऐसे 1008 भगवान के ये चिन्ह होते हैं। उनका वर्णन अपन शास्त्र में से भी खोजेंगे और वो सुनेंगे अपन कभी आगामी सत्र में। आज अपन ने महत्व की जो बात सुनी है वो ये है कि आनंद, धर्म क्षेत्र में जो आनंद होता है उसमें तीन आलंबन होते हैं। एक तो भक्ति के आलंबन से आनंद होता है, दूसरा ज्ञान के आलंबन, स्वाध्याय से। भगवान की वाणी जब अपन सुनते हैं, भगवान की वाणी को जब समझते हैं तो इसलिए आनंद आता है क्योंकि नासमझी के कारण जो पीड़ा थी उसको वो समझ अपहृत कर लेती है, समाप्त कर देती है, तो आनंद आता है। पीड़ा जाएगी तो सुख तो होना ही होना है। और इसी प्रकार ध्यान का आनंद होता है। ध्यान का आनंद प्राप्त करने के लिए आसन विजय भी अपेक्षित है क्योंकि आसन को जिसने नहीं वश में किया है वह कुछ ही समय में आसन से पीड़ित होकर आकुल व्याकुल हो जाएगा। और संलेखना में आसन विजय बहुत उपकारी होती है। तो ऐसी कुछ बातें आज अपन ने सुनी है। भक्त के बारे में भी बहुत महत्व की बात थी वो। एक तो जिसका जिसकी अकड़ टूट जाए वो भक्त होता है। अकड़ टूटने पर अपने को ये सब बातें पकड़ में आती हैं और फिर आराध्य के आदेश, उपदेश, संदेश, निर्देश चारों को जो हृदयंगम कर ले, जीवन में अंगीकार करे वो भक्त होता है। जैनम जयतु शासनम। ओम नमो रहते भगवते तीर्थकृते श्रीमते महा देवाधिदेवाय परम भट्टारकाय जिनेन्द्र देवाय अनर्घ्य पद प्राप्तये अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ऐं अर्हम सर्वज्ञ समुत्पन्नायै दिव्यध्वनि रूपायै स्याद्वाद केतनायै अंगांग बाह्य भावितायै केवल ज्ञान कार्य कारणायै केवल श्रुत केवल प्रज्ञप्तायै सुविशुद्ध सम्यक दर्शन तिलकायै सम्यक चारित्र वस्त्राभरणायै जगन्मात्र स्वरूपायै भगवती जिनवाणी सरस्वती देव्यै ह्रीं श्रीं नमः अनर्घ्यपद प्राप्तये अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रूं ह्रौं ह्रः। आचार्य उपाध्याय सर्व साधुभ्यः अनर्घ्यपद प्राप्तये अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। देव शास्त्र गुरुभ्यो नमो नमः।